हम लोग आज पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध से अध्याय 30 श्लोक 46 4 30 46। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भस्मसात् क्रियमाणान् तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान् बर्हिष्मतः नयहि। भस्मसात् क्रियमाणान् स्तान् भस्मसात् क्रियमाणान् स्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः समयामासः पुत्रान् बर्हिष्मतः नयहि। पुत्रान् बर्हिष्मतो नयहि। भस्मसात् क्रियमाणान् स्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयहि। भस्मसात् क्रियमाणान् स्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयहि। भस्मसात् जलकर राख होना, क्रियमाणान् किया जाता हुआ, तान उन सब, द्रुमान वृक्षों को, वीक्ष्य देखकर, पितामह ब्रह्मा आगतः वहाँ आया, समयामास शांत किया, पुत्रान पुत्रों को, बर्हिष्मतः राजा बर्हिष्मान के, नयहि तर्क द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जल कर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। तात्पर्य, जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्हें राजा बर्हिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रचेताओं के विषय में पढ़ रहे हैं। प्रचेता लोग दीर्घ काल तक, बहुत समय तक तपस्या किए, भगवान का दर्शन किए, और यद्यपि वे भगवान के दर्शन से पूरा तृप्त नहीं हुए थे, लेकिन भगवान स्वधामम ययौ, अपने धाम को चले गए। यानम अनिच्छता, यद्यपि प्रचेता लोग नहीं चाह रहे थे कि भगवान हमारे आँखों के सामने से दूर जाएं, लेकिन भगवान अपने धाम को चले गए। अपने धाम को चले गए इसका अर्थ है कि अपने धाम वैकुंठ में चले गए, या स्वधाम जो अपने लोगों का रहने का स्थान है, भक्तों का हृदय है, उसमें चले गए। तो अथ निर्याय सलिलात प्रचेत उदंगत, और प्रचेता लोग को भगवान आदेश दिए थे, आशीर्वाद दिए थे, आदेश का पालन करते हुए जल से बाहर निकले, समुद्र से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकले तो देखते हैं कि द्रुमय छन्न गाम रोध विवच्छित, देखें कि पूरी पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भर गई है। अभी प्रचेता लोग तपस्या में थे, और इसी के बीच में नारद जी बरहिस्मत के पास गए, प्राचीन बरही के पास गए, और उनको उपदेश दिए। उपदेश का परिणाम यह हुआ कि राजा मैसेज छोड़ करके, संदेश दे करके मंत्रियों को यह कह करके कि हमारे पुत्र आएंगे तो उनको राज्याभिषेक कर दीजिएगा, और तुरंत वे वन में चले गए, राज का त्याग कर दिए। तो राजा के अभाव में भली भांति कृषि कार्य नहीं हो रहा था। जो भी गांव का अनुभव रखते हैं वे समझ सकते हैं कि खेतों को ठीक से जोता न जाए तो वहाँ वृक्ष स्वाभाविक उग आते हैं। हम लोग तो देखे हैं, और वृक्ष बढ़ते जाते हैं। ये लोग है जब समुद्र से बाहर आए प्रचेता लोग, तो वृक्ष अकुप्य वे देह करके क्रोधित हो गए। वे किसको देह करके, जो कह रहे हैं कि द्रुमय छन्नम गांव, पृथ्वी को देखे कि इस सब जगह वृक्ष भर गए। वृक्ष भर गए तो इसमें क्रोध की क्या जरूरत है, क्रोधित क्यों हो गए। तो कहे काम गाम रोधुम इवो छ्रित, वे देख रहे हैं कि वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, और उनके मन में यह भावना आने लगी कि ये वृक्षों को देखो, हमारे पिताजी के भूमि पर कब्जा कर लिए, हमारे पिताजी नहीं हैं तो भूमि पर यहाँ तो कब्जा कर लिए, और लगता है कि अब ऊपर स्वर्ग में बढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी यज्ञ किए हैं और सर्व स्वर्ग में भी उनको जो जगह मिला है, पद मिला है, स्थान मिला है, तो लगता है कि अब ऊपर बढ़ करके उस स्थान पर कब्जा करना चाहते हैं। रोधुम इव उच्छ्रित ही, ये ऊपर बढ़ रहे हैं और उनके मन में यही भावना है कि ऊपर जा रहे हैं कि जैसे भूमि पर कब्जा कर लिए वैसे स्वर्ग पर भी कब्जा करेंगे। इसको देख करके अकुप्यन वे कुपित हो गए, और कुपित हुए ततोग्नि मारितो राजन मुख मुंचन मुखतः रुषा, और तपोदीपित मन्य वह, उनका क्रोध बहुत उद्दीप्त था, क्रोध उद्दीप्त था, इसका कारण यह है कि बहुत दिन से भोजन का त्याग किए थे और ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि भूख और क्रोध का अधिष्ठान एक है, भूख है और क्रोध एक जगह टिकता है, तो दोनों का स्थान एक है। तपोदीपित मन्य वह वे तपस्या किए थे, और जैसे भूख बहुत प्रज्वलित थी वैसे क्रोध भी प्रज्वलित हो गया। हम लोग आज भी देखते हैं कि व्यक्ति भूखा रहता है तो उस समय क्रोध ज़्यादा करता है। साधु समाज में भी प्रचलित फ्रेज है, भूखा साधु बाघ बराबर। वैसे तो साधु बहुत स्नेही होते हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं ये प्रचलन में है भूखा साधु बाघ बराबर। जब साधु को बहुत भूख लगती है तो हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है। हम लोग गांवों में देखे हैं कि किसान लोग भोजन ले जाने में देर हो जाती है, बहुत कुपित होते हैं अपने पत्नी पर, अपने पुत्र पर। कभी कभी तो जो हल हाँकने के लिए बैल को मारने के लिए डंडा रखते हैं पैना, उसको चला देते हैं। जो हो, कल आप लोग क्रोध के औचित्य पर बहुत विश्लेषण सुन रहे थे, जो दृष्टि हो। लेकिन अभी आज का जो श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं कि भस्म सात क्रियमाणं स्थान द्रुमान विक्ष पितामह। जब वे उनको क्रोध आया तो तपस्या से उनकी शक्ति बढ़ी हुई थी, वे अपने मुंह से ही आग निकाल दिए और हवा भी निकाल दिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आग कहीं लगाते हैं वो आग जल्दी पकड़ता नहीं है, तो बेना डुलाओ, पंखा लाओ, क्या क्या करते हैं, कभी कभी मुंह से ही फूंकते हैं। वो भाती रखते हैं आग को दीप्त करने के लिए, और प्रचेताओं की शक्ति थी, और मुख से ही आग निकले और हवा भी आंधी जैसा बहा दिए। अब तो वृक्ष जलने लगा, भस्म सात क्रियमाणं स्थान द्रुमान वृक्ष पितामह। अब तो ब्रह्मा जी देखे कि ये सब वृक्ष जल रहे हैं, तो तुरंत आए और समयामास पुत्रान बरिष्मतः नये। जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं वो कई एक तर्क दे करके उनको समझाए, उनका क्रोध शांत किए। क्रोध के लिए कभी कभी लोग औचित्य देते हैं, शायद जहाँ भगवान का अपमान हो रहा है, भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा है, तो वहाँ क्रोध का कुछ औचित्य हो सकता है, अन्यथा क्रोध का किसी भी स्थिति में औचित्य नहीं है। ये तमोगुण की वृत्ति है और क्रोध से व्यक्ति की अधोगति होगी, और अंततः जो सद्गति चाहता है वो क्रोध का त्याग करना ही होता है। जब तक क्रोध के वेग का सहन नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान गीता में यह सिद्धांत दिए हैं, शक्नोति यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेग स युक्त स सुखी नर। प्राक शरीर विमोक्षणा, इस शरीर के त्याग के पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सह लेता है वही सुखी है, वही युक्त व्यक्ति, वही योगी है। प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर त्याग के पहले, तो यह योग्यता लानी ही पड़ेगी। कोई भी योगी है, साधक है, और उसका यह लक्ष्य है कि एक स्थिति प्राप्त करना है कि काम और क्रोध के वेग को सहन कर सके, उससे उद्वेलित न हो। प्राक शरीर विमोक्षण, मृत्यु के पहले एक कर लेना है। या दूसरा अर्थ है कि शक्नोते यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवम वेगम। दो स्थिति है, एक शरीर त्याग के बाद की स्थिति है और एक पहले की स्थिति है। मतलब प्राक शरीर विमोक्षणार्थ जब प्राण निकल जाए तो उस समय भी शरीर रहता है और प्राण के साथ भी है। मान लीजिए कि किसी के शरीर से प्राण निकल गया और उस समय कोई ज्योति स्त्री उसकी प्यारी पत्नी आकर के उसको आलिंगन करे, प्राण निकल गया है और उसकी पत्नी आकर के उसका आलिंगन करे लेकिन उस शरीर में कोई विक्रिया नहीं होगी, कोई क्षोभ नहीं होगा और बेटा उस शरीर को आग पर रख दे लेकिन फिर भी उस शरीर में कोई क्षोभ नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जैसे प्राण त्याग के बाद स्थिति हो जाती है वही स्थिति प्राक शरीर विमोक्षणात् ये प्राण जाने के पहले ही हो जाए तब व्यक्ति उस स्थिति में सुखी है, युक्त है। देखिए आदर्श यही है कि जैसे मृत्यु के बाद शरीर के साथ कोई कामनी आकर के आलिंगन करे या कोई आग पर फेंक दे, कोई क्षोभ नहीं होता है, कोई विक्रिया नहीं होती है, वो वैसी स्थिति ही पहले ही अर्जित कर लिया जाए तब व्यक्ति सुखी है। तो ब्रह्मा जी आ करके उनको समझाने लगे, भस्म सात क्रियमाणस्ता, वृक्षों को जलाया जा रहा है, बहुत भारी संकट की स्थिति है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के व्यवस्थापक हैं, इंचार्ज हैं, तो वे ऐसे विषम स्थिति को तुरंत सुलझाना चाहते हैं। जैसे कोई संस्थान है और वहाँ कोई बहुत भारी अड़चन आ जाए, बहुत विनाशक स्थिति आ जाए, तो संस्था का जो प्रधान है या जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सुलझाना चाहता है। और ब्रह्मा जी भी ब्रह्मांड के सबसे जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कोई बहुत विषम स्थिति आ जाती है तो तुरंत उसका समाधान करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यपु के तपस्या का उल्लेख कर रहे हैं। आप कथा जानते हैं कि भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई है। जब हरिणा क्रोड मूर्तिना हिरण्यकश्यपु के यह पता चला कि विष्णु हमारे भाई का वध कर दिया और उसको बहुत क्रोध हुआ और बहुत शोक हुआ, विष्णु के प्रति उसको बहुत क्रोध आया और अपने भाई के प्रति बहुत शोक हुआ और वो बहुत क्रोध से बोलने लगा। वे इतने क्रोध में हो गया कि उसका शरीर कांप रहा था और आंख से मानो लपट निकल रही थी और ऊपर ऐसे दृष्टि करके देख रहा था। वहाँ वर्णन किया गया है कि निरीक्ष धूम्रांबरम, वह धुआं को देख रहा था, आकाश को देख रहा था। भाई धुआं कहाँ से आ गया, आकाश तो नित्य है, ऊपर वो देख रहा था, वो ऊपर देख रहा था कि वो जो हरि है विष्णु है ऊपर रहता है, क्रोध उसके प्रति था वो ऊपर देख रहा था। और कह रहे हैं कि धूम्रांबरम धुआं भी देख रहा था, उसको इतना क्रोध था कि उसके आँख से लपट निकल रही थी और उसे धुआं भी भर रहा था, उसके आँख से ही जो धुआं निकले थे उसको भी देख रहा था। और कहा कि हमारे भाई का वध कर दिया, हम उसका बदला अवश्य लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भगवान को गाली देने लगा, तस्य त्यक्त स्वभावस्य, अरे कि वो भगवान पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन उसका स्वभाव बदल गया, अब अपना स्वभाव छोड़ दिया। वो कह रहा है कि भगवान का मतलब है कि परमात्मा है, सबके साथ एक व्यवहार करता है, लेकिन अब वो तो भेदभाव करने लगा। वो इतना उसमें पतन हो गया, इतना उसका स्वभाव बदल गया कि बच्चे के समान अस्थिर हो गया। जैसे किसी बच्चे को कोई मिठाई दे दीजिए तो आपके पीछे पीछे वे चलने लगता है, तो उसी तरह देवता उसको पूजा कर दिए, कुछ उपधावन कर दिए, तब देवताओं का पक्ष लेकर के हमारे भाई का वध कर दिया। तो कितना उसका ह्रास हो गया। अरे वह इस सुअर का रूप धारण कर लिया, उसको लज्जा भी नहीं आई, इतना देवताओं के अधीन हो गया, उनके पीछे हो गया, ये सुअर का रूप धारण करके वध कर दिया। बहुत निर्लज हो गया, अपना पोजीशन खो दिया, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, हमारे भाई को खून बहुत प्रिय है। वो त्रिशूल दिखा करके कह रहा है कि इसी त्रिशूल से उसका गर्दन काटूंगा और उसी खून से तर्पण करूंगा। और इसके बाद दैत्यों को अपने अनुचरों को समझाने लगा, देखो तुम लोग एक काम करो, ये जो विष्णु के सहायक हैं, विष्णु जहाँ से शक्ति ग्रहण करता है उसका नाश करो। वो कहा कि मैं तो विष्णु को मारूंगा ही। वो दैत्य लोग कहें कि आखिर विष्णु का वध करने से तो क्या लाभ होगा, जो इंद्र इत्यादि जो हमारे शत्रु हैं तो उनका तो कुछ क्षति नहीं होगा, तो वैसे ही रहेंगे। कि ना ना तुम लोग सिद्धांत नहीं समझ रहे हो, बिटपा इव सुष्यंति विष्णु प्राणा दिवस। अरे यदि विष्णु की हत्या कर दूंगा तो देवता तो अपने से खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी वृक्ष के मूल को काट दिया जाए तो वृक्ष के डाली तो स्वतः ही सूख जाते हैं, वो विष्णु पर ही आधारित हैं। और विष्णु का मूल क्या है, वो कहाँ से शक्ति लेता है, विष्णु द्विज क्रिया मूल, ये ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कराते हैं इसी से विष्णु का पोषण होता है। तो तुम लोग एक काम करो कि पहले यज्ञ करने वालों को नष्ट करो, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं या जहाँ से यज्ञ की सामग्री आती है, गाय को या गाय का जो स्थान है, गाय के पालन करने वाले जो गोप हैं उनके स्थान को नष्ट करो। भाई इससे क्या फायदा होगा, कि वहीं से शक्ति आती है और विष्णु को इतने वे प्रिय हैं, ये ब्राह्मणों की हत्या करोगे, गाय की हत्या करोगे तो उनके बिछोह में वह सुख जाएगा। जैसे कोई माता पिता हैं तो अपने पुत्र के बिछोह में बिलगाव से भी बहुत दुखी हो जाते हैं, भोजन पानी भी त्याग देते हैं, वैसे विष्णु बलहीन हो जाएगा। और मैं तो उसका वध करूँगा, ऐसे आदेश दिया। तो कदनब प्रिया, उनको तो दैत्यों को, देवताओं को दुख देने में, ब्राह्मणों को दुख देने में वो स्वतः रुचि है, वे खूब अत्याचार करने लगे। इतना अत्याचार किए कि देवा चेरु अलक्षिता, भूई चेरु अलक्षिता, देवता लोग अपना स्थान छोड़ दिए और छिप करके पृथ्वी पर रहने लगे। और इतना आदेश दिया, इसके बाद उसकी माँ बहुत दुखी थी तो उसको समझाया, कई एक तरह से समझाया और इतिहास बतला करके उसी नरेश की पत्नियों का आख्यान प्रस्तुत करके समझाया। और जब समझाया, आत्मतत्व का विवेचन किया, यमराज के इतिहास को बतलाया, तो उस बात को सुन करके अदिति का शोक कम हुआ और तत्वे चित्त मधारयत। हिरण्याक्ष की पत्नी रुषाभानु और माँ दिति तत्वे चित्त मधारयत, वे जीवन मरण के स्थिति को समझ गए और उनका शोक दूर हुआ, लेकिन इसका अभी क्रोध दूर नहीं हुआ हिरण्यकश्यपु का। वो कहा कि उसका वध करूंगा और उसके लिए मंदरा द्रोणिया, वो मंदराचल पर चला गया और वहाँ तपह ते पे परम दारू, बहुत कठोर तपस्या करने लगा, बहुत कठोर तपस्या। उसके तपस्या के विषय में लिखा गया है कि नभो दृष्टि, उसका दृष्टि आकाश में था, आकाश में दृष्टि रखा था, को विष्णु के वध पर उसको दृष्टि है, विष्णु के तरफ दृष्टि रखा है, और अपने अंगूठे पर खड़ा हो गया, ऊर्ध बाहु ऐसे बाह ऊपर करके ऊपर दृष्टि भी रखा था और अंगूठे पर खड़ा हो गया, और उसके जटा से किरण निकलने लगे, ऐसे किरण निकल रहे थे कि मानो प्रलय काल के अग्नि उपस्थित हो गया। वो तपस्या कर रहा था और उसके इतना उग्र तपस्या किया कि उसका परिणाम यह हुआ कि सब तरफ आग फैलने लगी। जब वो तपस्या में लग गया तो देवता लोग तो अपने स्वर्ग में आ गए, बहुत काल तक तपस्या में रहा, लेकिन उसके तपस्या का ऐसा प्रभाव हुआ कि आग सब जगह फैलने लगे। अब तो देवता लोग घबरा गए, सब लोग जलने लगे, घबरा करके देवता लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि जब तक ये लोग जल करके खत्म नहीं हो जाता उसके पहले कुछ उपाय कीजिए। ये हिरण्यकश्यपु के तपस्या से सब लोग जल रहे हैं, तो कोई शांति का उपाय कीजिए, नहीं तो सब लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न करने के लिए, विद्वेष उत्पन्न करने के लिए देवता लोग कहने लगे कि आप जानते हो क्यों तपस्या करता है, वो आपका पद लेना चाहता है और उसका इच्छा यह है, उसकी इच्छा यह है कि यह यथा विधिष्ठता, जो आप नियम बनाए हैं तो उसको उल्टा करना चाहता है, वो आपका पद लेने के लिए, आपके नियम को बदलने के लिए वो तपस्या कर रहा है। भाई कैसे वो ब्रह्मा जी के पद को ले लेगा, कैसे वो निर्णय बदलेगा, वो पहले ही तपस्या में जाने के पहले ही विचार किया है कि सब नियम ब्रह्मा का चलता है और मैं उस पद पर पहुंच करके और सब नियम बदल दूंगा, तो अपने को अजर बनाना चाहता था, अमर बनाना चाहता था और ब्रह्मा जी के नियम को बदलना चाहता था। ब्रह्मा जी नियम बनाए हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तपस्या करेगा, तो उसको बाद में स्वर्ग में सुख मिलेगा। जो व्यक्ति यहाँ अतिशय भोग में रहेगा, खास करके पाप में कर्म करेगा, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन हिरण्यकश्यपु की इच्छा थी कि ना यह नियम बदलेगा, इस नियम को हमको बदल देना है। जो व्यक्ति यहाँ तपस्या करेंगे, दुख भोग रहे हैं, सालों को नरक में डालूंगा, दुख भोग, और जो यहाँ भोग में है तो उनको स्वर्ग मिलेगा, तो वह नियम बदलना चाहता है। और हिरण्यकश्यपु दृढ़ निश्चय था कि मैं करूँगा, अभी कैसे करोगे, उसके लिए तो बहुत भारी तपस्या की जरूरत है। ब्रह्मा का पद पाने के लिए सतजन्म भी पुमान, 100 जन्म तक ठीक ठीक धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि इससे क्या हुआ, काल और आत्मा तो अमर है ना, हम तपस्या के बल से उस पद को प्राप्त करेंगे, और मान लीजिए कि हमारी मृत्यु हो जाती, लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो हमारी आत्मा तो नहीं खत्म हो जाएगी और काल तो नहीं समाप्त हो जाएगा, आत्मा है, फिर शरीर मिलेगा, फिर तपस्या करूंगा, लेकिन उसके नियम को बदल दूंगा। और देवता लोग कह रहे हैं कि ऐसे उसकी इच्छा है। और ब्रह्मा जी देवताओं की बात सुन करके आए और मंदराचल पर आए तो कहीं हिरण्यकश्यपु का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ हुआ है। जैसे कोई गोबर है, गोबर कड़रा है, उसमें दीमक लग जाते हैं और वो पता ही नहीं चलता है कि वो गोबर कहाँ है, ऊपर से मिट्टी जैसा छा जाता है। कभी कभी कोई पुस्तक है उसमें इतने दीमक लग जाते हैं कि पन्ना पर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो वैसे हिरण्यकश्यपु के शरीर में दीमक लग गए थे और उसका जो मांस था, चमड़ा था, सब दीमक खा गए थे। प्राणा अस्तित्व से रहते, उसका प्राण हड्डी में था, वो दीमक ऐसे दिख रहा था, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चल रहा था और कहाँ है। लेकिन फिर वे देखे कि एक जगह चमक आ रही। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कभी कभी सूर्य बादल से आच्छादित हो जाता है और फिर भी सूर्य का कुछ चमक दिखता है, वैसे हिरण्यकश्यपु जब दिखा, तेज उसका दिखा और ब्रह्मा जी आए और कहे कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अरे अब उठो, तपस्या से विरत हो, तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, जो वर है मांग लो। और अपने कवंडल से पानी छिड़के, जब ही पानी छिड़के तो उसका शरीर तप्त सोने के समान, कांति के समान स्वस्थ हो गया और उसके अंग पुष्ट हो गए और बहुत सबल हो गए, उसके इंद्रियों में बल आ गई। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कहे कि तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, तपस्या से विरत हो जाओ, क्योंकि तपस्या से सारा संसार जल रहा था और ब्रह्मा जी उसको वर देने का वचन दे करके तपस्या से विरत किए, वो तपस्या से विरत हो गया। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे हिरण्यकश्यपु को तपस्या से विरत किए, वैसे ही कोई विषम स्थिति आ जाती है तो ब्रह्मा जी आ करके और उसको संभालते हैं। पर इस समय भी विचार कीजिए कि कितनी विषम स्थिति है, सारे वृक्ष जलाए जा रहे हैं, ये बहुत विषम स्थिति है। वो कह रहे हैं कि आगतः समयामास पुत्रान बरहिस मतः नये, और ब्रह्मा जी वहाँ आए और कई एक तर्क दे करके प्राचीन बरही के पुत्रों को शांत किए, न यही बहुवचन में बोल रहे हैं, कई एक तर्क दिए। वे कहने लगे कि अरे थोड़ा विचार करो, तुम वृक्षों को जला रहे हो, भगवान प्रजा पालन का आदेश दिए हैं, वृक्ष कितने दीन हैं, बेचारे कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, फिर दीनहीन को जला रहे हो, कैसा है तुम्हारा निर्णय है। और कह रहे हैं कि थोड़ा अपने निर्णय पर विचार करो कि तुम लोग प्रजा का वर्धन चाह रहे और वृक्षों को जला रहे, अरे वृक्षों से ही फल मिलता है, औषधि मिलती है, ये तो प्रजा के वर्धन में सहायक हैं, कैसे तुम इनको जला रहे। कई एक तर्क दिए, कहे कि थोड़ा प्रकृति के साइकिल पर, चक्र पर विचार करो कि पशु और वृक्ष मनुष्य के लिए कितने उपयोगी हैं। देखिए आप इस चक्र पर विचार करें तो पशु का जो त्याज्यांश है, हेय अंश है, तो वह वृक्ष के लिए सहायक है और जो उसका महत्वपूर्ण अंश है उसको मनुष्य ग्रहण कर लेता है। कोई पशु है, गाय है, तो दूध तो मनुष्य ले लेता है, लेकिन गोबर से वृक्ष की पुष्टि होती है। अच्छा, वृक्ष की पुष्टि हुई तो उसे फल मिलेगा, वो फल से, औषधि से या वृक्ष से, मतलब फसल से या वृक्ष से अन्न मिलेगा, फल मिलेगा, तो उससे व्यक्ति पुष्ट होगा, मनुष्य समाज पुष्ट होगा, शक्ति मिलेगी। और जो वृक्ष का हेय अंश है या औषधि का, फसल का हेय अंश है, भूसा है, पत्ता है, तो उससे पशुओं का पालन हो जाएगा। ये बहुत सुंदर चक्र है, तो वृक्षों को तुम लोग नष्ट कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो। और वे कहने लगे कि अरे देखो, जो व्यक्ति आकाशात उल्बणम, अचानक शरीर में क्रोध आ जाए और उसको शांत कर ले, वही मुक्त होता है। जब तक काम क्रोध को शांत करने की शक्ति नहीं रखेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। तो एक तरह से कह रहे हैं कि जब तक तुम लोग क्रोध शांत करने की शक्ति नहीं रखते हो तब तक मुक्ति तुमको नहीं मिलेगी। तो तुम लोग क्रोध को शांत करो। और भी कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति दूसरे जीवों की सहायता करता है, उनसे द्रोह नहीं करता है, तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। भगवान जितना जीवों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं उतना प्रसन्न बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होते। यही ब्रह्मा जी तृतीय स्कंध में बोले हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचारय आराधिता सूर्यगण हृदय बद्ध कामय। जो देवता लोग हैं अनेक प्रकार के सामग्री जुटा करके बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं हृदय बद्ध कामय। उनके मन में यह कामना है कि इतना बड़ा यज्ञ करें कि हमारा नाम हो जाए, जस फैल जाए। और उस यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई किसी प्रकार से आराधना कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचारय, लेकिन भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते, वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे यत् सर्वभूत दया, जैसे दूसरे जीवों पर दया करने से, दीनहीन प्राणियों की सहायता करने से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं और उतना प्रसन्न यज्ञ से भी नहीं होते। ये वृक्ष दीनहीन हैं, एक जगह रहने हैं, कोई आग लगा रहा है तो भाग भी नहीं सकते हैं, ऐसे दिनों को तुम लोग कष्ट दे रहे हो। ये भगवान के संतोष के विपरीत कार्य कर रहे हो, और भगवान के प्रसन्नता के लिए वृक्षों को मत जलाओ। तो ऐसे ब्रह्मा जी कई एक प्रकार का तर्क दे करके प्राचीन बरही के पुत्रों के क्रोध को शांत किए, और ब्रह्मा जी की बात सुन करके भी शांत हो गए। इसके बाद वृक्षों के जो अधिदेवता हैं चंद्रमा जी, वे वृक्षों द्वारा पालित कन्या को लाकर के प्रदान किए और प्रचेता लोग उनसे विवाह किए। तो ये सब कथा आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे। इस श्लोक में यही कहा गया है कि जब वृक्ष जलने लगे तो ब्रह्मा जी आ करके कई एक तर्क दे करके, कई एक प्रकार की बात कह करके प्राचीन बरही के पुत्रों को शांत किए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है कि है? हाँ बोलिए। क्रोध का शमन कैसे किया जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्रोधम काम विवर्जया, श्रीमद् भागवतम में कई एक चीज है समित करने के उपाय दिए गए हैं। उसमें क्रोध को समित करने का उपाय दिया गया है, क्रोधम काम विवर्जया, कामना का त्याग करेंगे क्रोध का शांति होगी। क्योंकि कामना के चलते ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से कई एक दोष को समित करने के उपाय दिया गया है। लेकिन अंत में नारद जी कहते हैं कि गुरु भक्त्या, गुरु की सेवा करने से, वैष्णवों की सेवा करने से ये सारे दोष शांत हो जाते हैं। तो दो लेवल का उपाय बतलाया गया है, एक 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 आइटम के लिए अलग अलग। तो क्रोध के लिए क्रोधम काम विवर्जया, कामना से मुक्त रहेंगे, मन में काम नहीं आने देंगे तो क्रोध भी नहीं उत्पन्न होगा। तो या तो एक क्रोध के लिए, लेकिन किसी भी दोष को उपशमित करना चाहते हैं और उसके लिए उपाय महत सेवा है, वैष्णवों की सेवा है, गुरुजन की सेवा है, उनकी सेवा से ये सब दोष समाप्त हो जाते हैं। महत सेवा से क्या समझे? सेवा का क्या अर्थ है? सेवा या सेवन, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा करना भक्ति है। तो भगवान की सेवा की बात कही गई है और भगवान की सेवा लक्ष्यशः लाखों प्रकार से की जाती है, उसी को रूप गोस्वामी 64 भाग में बांटे। फिर उसी को नवधा भक्ति कहते हैं, जो कहते हैं जहाँ तदीय सेवन की बात है तो तदीय में वैष्णव भी हैं। अब ये प्रश्न है कि वैष्णव की सेवा कैसे की जाए, रूप गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि जितने प्रकार से भगवान की सेवा होती है उतने प्रकार से तदीय की वैष्णव की सेवा हो सकती है। तो वैष्णव सेवन का बहुत व्यापक क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी अब तत्कालिक अर्थ किया जा सकता है कि उनके इच्छा के अनुरूप व्यवहार करना या उनके प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना। कभी कभी इच्छा के अनुरूप व्यवहार में भी थोड़ी सी बाधा आ जाती है, और उनके प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना जिससे वे प्रसन्न हों और प्रैक्टिकली उनकी जो आवश्यकता है अन्न की, दवा की, भोजन की, शारीरिक सेवा की, जैसे जिसकी क्षमता है शरीर से, धन से, प्रभाव से उनकी सेवा किया जा सकता है और उनको प्रसन्न करना यही महत् सेवा है, जैसे प्रसन्न हो जाए। और एक्चुअली इस विषय में ये समझना चाहिए कि जो महत् प्रसाद और महत् कूप की बात आती है तो उनके वाणी से यह नहीं प्राप्त होता है, केवल वाणी से नहीं प्राप्त होता है, वाणी से भी प्राप्त होता है। हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि आशीर्वाद तो रुआ से निकलता है, उनके चित्त की जो संतुष्टि है उससे आशीर्वाद आता है, उससे उत्थान होता है। और जहाँ तक ह्रास की बात है, अपराध की बात है, तो ऐसा नहीं है कि उनका चित्त दुखी होगा तभी अपर अपराध लगेगा, या वे वाणी से साप देंगे तभी अपराध लगेगा। उनका चित्त दुखी न भी हो लेकिन भगवान उसको माफ नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्लोक हमें याद नहीं है, श्लोक इस विषय में है, लेकिन इसी का अनुवाद रामचरितमानस में है, राम रोष मह जरहि, राम कोप, राम रोष मह जरहि। भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान का क्रोध उसको जला देता है, राम रोष पावक मह जरहि। कभी एक प्रश्न है कि जब हृदय की प्रसन्नता और कोप की बात है तो कोई वैष्णव का हम कुछ अपराध भी की है तो कुपित नहीं हुआ तो हमारा क्या क्षति होगा, लेकिन वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। भगवान कुपित होते हैं और उससे अनर्थ हो जाता है। राम रोष पावक मह जरहि, भगवान के क्रोध से उसको जलना पड़ता है। और महत् सेवा का निर्विशेष रूप से अर्थ किया जाए तो यही है कि उनके चित्त को संतुष्ट करना, उनके चित्त के संतुष्टि से और असंतुष्टि से बहुत भारी प्रभाव हो जाता है। अब जैसे उनको संतुष्ट करें, वो संतुष्टि के विषय में दो चीज है, एक तो सेवा से व्यक्ति संतुष्ट होता है और कभी कभी सौशील्य गुणा वितृप्त। विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के पास गए तो सौशील्य गुणा वितृप्त उनके स्वभाव से ही तृप्त हो गए। अब वहाँ श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है तो पाठ भेद से वो सौशील्य गुणा वितृप्त और तृप्तम दोनों है, तो दोनों पर घटित होता है। विदुर जी भी तृप्त हो गए, अव्यग्रम मैत्रेय जी एक निश्चिंत बैठे थे और उससे तृप्त हो गए, या मैत्रेय जी विदुर के स्वभाव से तृप्त हो गए और श्रीमद् भागवतम सुनाए और विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं तो मैत्रेय जी के उत्तर सुन करके कह रहे हैं कि हम कई एक अपने बंधन को दूर कर दिया और जो आकी बाकी है और उसको भक्तों की सेवा करके मैं उसको दूर कर दूंगा। महत् सेवा का या वैष्णव सेवा का, गुरु सेवा का अब एक शब्द में अर्थ कर तो उनके प्रसन्नता को लेंगे, उनके प्रसन्नता विधायक जो कार्य कर रहे हैं वही उनकी सेवा। ठीक है, हरे कृष्णा।